کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم سب کی یہ کوشش ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ پورا سارا مجمع پورے علاقے کا یہاں کے اوپر جمع ہو جائے، اور جمع ہو کر ہم کچھ ایسی فکر کر لیں اور محنت کے نتیجے میں اللہ سے ہم مانگ لیں تو اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے. یہ ہماری محنت جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. یہ جو اجتماع اللہ پاک نے ہمیں دیا وہ اجتماع سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت کو اپنی آخرت یاد آ جائے. آج دنیا میں جتنی محنتیں جتنی کوششیں ہو رہی ہے وہ آخرت کو بھلانے کی ہو رہی ہے. کتنے گھر ہم کو ایسے ملیں گے، کتنے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جس کو 24 گھنٹے نہیں مہینوں تک آخرت یاد نہیں آتی. بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، جنازے میں چلنے والے کو بھی اپنی موت یاد نہیں آتی، وہ بھی اپنی دنیا کی فکر میں رہتا ہے، سوچ میں رہتا ہے. اس لیے کچھ لوگ جنازہ نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں، کچھ قبرستان میں نہیں پہنچتے ہیں. کیا ہے، بیزی ہے، کام ہے. یہی بیزی یہی کام ہمیں آخرت کو بھلا رہے، اور یہ سب سے بڑی ہماری چوک ہو رہی ہے کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے. اس لیے دنیا کی وقتی ہونا، دنیا کا ٹیمپرری ہونا، دنیا میں تھوڑے وقت کے رہنا، یہ ہمارے اندر سے استحصال ختم ہو گیا. میں میری 24 گھنٹے کی زندگی کا اگر جائزہ لوں، میری زبان سے ہو، میرے کان سے ہو، میرے دماغ سے ہو، میرے بدن کے ہر بدن نکلنے والے اعمال سے اگر دیکھا جائے تو میں تو میری دنیا آباد کرنے ہی کے فکر میں ہوں. جیسے موت کے اعتبار سے ہم بھولے ہوئے ہیں کہ بھائی موت ہمیں آئے گی. اس لیے دوستو یہ محنتیں کر کے کوشش کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر فرد امت کو اپنی آخرت کا استحضار پیدا ہو جائے. اور ہم سب جانتے ہیں آخرت بنے گی ایمان ہی کی بنیاد پر بنے گی. کس کی بنیاد پر بنے گی؟ ایمان ہی کی بنیاد پر بنے گی. ہاں دنیا چاہے آدمی کتنی آباد کر لے دوستو، ایک دن اس کو چھوڑ دینا ہے. ہم چاہے نہ چاہے ہمیں چھوڑنی پڑے گی. اور وہ جو ہم چھوڑیں گے آخرت، اس کے بعد جو ہمیں کام آنے والی چیز ہے وہ تو ایمان ہے. پھر آدمی چاہے کتنا ہی پچھتائے گا، کتنا ہی روئے گا، کام نہیں بنے گا. اس سے آتا ہے نا قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ آدمی جو روئے گا اور ندامت کرے گا اور پچھتاوا کرے گا، وہ ایک ہی بات کا، دنیا میں جو زندگی اس کی دین کے بغیر گزری ہوئی ہوگی، غفلت کے اندر گزری ہوئی ہوگی. اپنی گزری ہوئی زندگی میں یوں آتا ہے کہ اپنا ناخن چبانے لگے گا اور چبارے چبارے ہاتھ چبا جائے گا، لیکن اس کا احساس نہیں ہوگا، اس کام نہیں ہوگا اس موقع. اس لیے دوستو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، تندرستی دی، صحت دی. کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو آنا چاہتے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے. تو اللہ نے ہمیں قبول فرمایا. ہم سلیکٹڈ بندے ہیں اللہ کے، ہم نہیں آئے ہیں. کون لایا ہے؟ اللہ لایا، ہم نہیں آئے ہیں. یہ اللہ نے قدم اٹھایا، اللہ نے ہمارے دل میں دائیا پیدا کیا، جذبہ پیدا کیا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بڑی آسان ہے، دین ہمارا آسان ہے، دین کی محنت آسان ہے. دیکھو نا دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر آدمی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر کوئی وکیل صاحب یوں کہے کہ بھائی اس طریقے سے انجیکشن لگاؤ، ایسی دوا دو، ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ وکیل صاحب آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی، آپ تو اپنی وکیلات کرو، کہیں گے نہیں کہیں گے. وکیل صاحب کو جا کر میرا جیسا کوئی ماسٹر یوں کہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ وکالت کرو، یہ اور کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ جو بچوں پڑھاؤ. اگر میں بس اسکول میں پڑھا رہا ہوں، کوئی کھیت میں کام کرنے والا مجھے سمجھائے گا تو میں چلنے دے گا اس کے بعد. یعنی ہر فیلڈ کا آدمی وہی کام کر سکتا ہے، دوسرا نہیں. اللہ نے اتنی زبردست محنت ہمیں دی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا 100% وعدہ ہے، گارنٹیڈ وعدہ ہے. اور اس کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ ہر آدمی کر سکتا ہے. ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والا کولی بھی کر سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کر سکتے ہیں، انجینئر صاحب بھی کر سکتا ہے. اس میں جو جماعتیں چلتی ہیں نہیں، وہ جماعتوں کو ہمارے یہاں مہمان جماعت آئے اس کو لے کر بیٹھو اور پوچھو تو پتا چلے گا اس میں بھائی کون ہے. کہا ایک مزدور کرنے والا ایک آدمی ہے جو امیر بنا ہوا ہے. اس کے ہاتھ کے نیچے کون ہے؟ کہا پروفیسر بھی ہے. اس کے ہاتھ کے نیچے کون ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب بھی ہے. یعنی ہر آدمی کر سکتا ہے. اتنا آسان دین اللہ نے، اتنی آسان محنت اللہ نے عطا فرمائی. تو ہمیں یہاں بھی جو محنت کرنی ہے آسان محنت. لیکن دوستو ہماری محنت میں ہماری زبان جو ہے نہیں، उसको ट्रीटमेंट अपना देना बहुत जरूरी है। हमारे बोल से लोग जुड़ जाते हैं, हमारे बोल से लोग दुर्गी हो जाते हैं, ये हमारी जबान है। इसलिए कहते हैं लोगों का अगर कोई बात समझानी है तो समझाने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक तरीका ये है कि उसको फजाइल सुनाओ। उसको क्या सुनाओ? फजाइल सुनाओ। और दूसरा तरीका ये है कि अखलाक से पेश आओ। क्या जिंदगी और नबूवत के बाद की भी आपकी जिंदगी आप देखें, आपने क्या किया? फजाइल पर लोगों को आखिरत दिखाई, लोगों को जन्नत बताई, सहाबा को जन्नत बताई। इसे सहाबा पूछे कि ऐसा हमें क्या मिलेगा? कहा आपको जन्नत मिलेगी। तो सहाबा क्या करते थे? घर वापस जाते थे? नहीं, जिहाद में जान देने के लिए तैयार हो जाते। फिर तो ऐसा हम तैयार। और अखलाक के एतबार से तथा आप जैसे अखलाक तो दुनिया में कोई नहीं पेश कर सकता। आपने ऐसे अखलाक पेश किए। ये जो मजमा आया है उसके ये दो बातों को अपने जहन में जरूर रखना है। जो हम खिताबा जमाते हैं हमारे जिम्मे क्या क्या आएगा? कहावे तालीम कराना हमारे जिम्मे आएगा, मजमे को जोड़ना हमारा जिम्मे आएगा, सफों को दुरुस्त कराना वो हमारे जिम्मे होगा, लोगों के आपस में इख्तिलात करके जहन बनाना वो हमारे जिम्मे होगा। ये हमारे खिताबा जमात के काम है। उसमें आप तकसीम करोगे तो 20-20 की हमारी जमात बनेगी। वो हम तकसीम करेंगे। अब उसमें ना आप तय करो कि भाई दो साथी हमारे तालीम कराएंगे, जैसे हल्के लगेंगे, जैसे आपको कहा जाएगा, उस एतबार से। अब उस एतबार उसको समझाना है, ऐसे इख्तिलात करना है। इख्तिलात जानते हो ना, आपस में मिलना जुलना। अब हम इस कैंपस में आ चुके हैं, इस मंडप में आ चुके हैं, इस मैदान में आ चुके हैं। हमारी एक ही मेहनत होगी कि हर उम्मती का आने जो आ रहे हैं उनका पूरा वक्त कैसे दीन की मजलिसों में लगे। हाँ, अपनी बस्ती तकाजे के मौके पर बस्ती तकाजे पूरे करे, लेकिन वहां भी उनकी जहनियत यह हो कि खाते हो ये नहीं कि माशाल्लाह 3 साल के बाद इस्तीमा मिले हैं और 3 साल का आपस में मिल रहे हैं कोरोना के बाद, तो खैर खबर पूछ ले, बच्चों की खबर पूछ ले, कारोबार की नहीं, ये हमारा काम नहीं। हमारा पूरा मिजाज ये होगा कि एक एक उम्मती का जान माल वक्त सलाहियतें कैसे दिन पर लग जाए। यही कुरान, यही फिक्र। मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनके जरिए अल्लाह पाक ने ये काम लिया, आपकी क्या फिक्र थी? आपके पास जो लोग आते थे आप उसको क्या समझाते? आप हमेशा क्या सोचते थे? एक मरतबा आपके मस्जिद के अंदर, यानी बंगले वाली मस्जिद के अंदर, उस शुरू के जमाने में एक नौजवान आया और वो जूता पहन के मस्जिद उसमें घुस गया दरवाजे से अंदर। वहां बाहर पहले हौज था, हौज पर आ गया तो वो मेवाते उस मौके पर बिछारे चंद थोड़े से मेवाते थे तो चिल्लाए, ए भाई आपने जूते नहीं निकाले, बैठ गए। ये है मौलाना कमरे के अंदर, अपने हुजरे के अंदर ये आवाज सुनी, फौरन आप बाहर आए और आकर तो उसके कोई बात कुछ बात नहीं। और फिर उस नौजवान के पास गए और यूं कहा कि वो जानते थे कि नौजवान कैसे दिन में इस्तेमाल हो जा रहा। तो उसको कहा अच्छा ठीक है, आप वजू वगैरह कर लो, आप हाथ मुंह धो लो आपको, और फिर मेरे पास आओ। फिर पूछा आप कौन है? कहा मैं यहाँ बैडमिंटन या ऐसी कोई खेलने के लिए जाता हूँ और वापस से मैं यहाँ हाथ मुंह धोके निकल जाता हूँ। तो आपने कहा कि ठीक है रोजाना आया करो और हमारी चाय भी पी के जाया करो। और चाय पीने के लिए बुलाया, अपने हुजरे बुलाया, चाय पिलाया उसने। बस इतनी कोई तश्किल नहीं थी कि आप 4 महीने जाओ। आपको यूं ये नहीं समझा कि ये है वो है, बस उसको करीब किया और एक माहौल आपने बनाया था। और माहौल में उसके सामने ये बात की, आप जानते हो जब पहली जमात जापान भेजने का मौका आया, वीजा का मसला था, वही नौजवान अमीर बनकर जमात लेके गया जापान। जापान में काम की बुनियाद वो नौजवान बना। ये हमारा काम है। आप वीजा बुनने से पहले पूरा जंगल था, एक डाकू किस्म के लोग, मुसलमान ही वो रहते थे। आपने सुना कि वो लोग वहां के पर है, आपके अंदर कुरान और फिक्र थी कि ये डाकू पना छोड़कर कैसे आखिरत के कामयाब बन जाए और कैसे उनकी जिंदगियों में अल्लाह के अवामी रह जाए। आप सिर्फ वहां जाके सलाम करके निकल जाते, आप जाके सलाम करके निकल जाते। तो किसी ने कहा कि भाई ये मालूम होता है कि मुखबिर है, यानी पुलिस को खबर देने वाला आदमी होगा। तो फिर जो उनका डाकू था, बड़ा सरदार था, उसने पूछा भाई आप कहा? मैं यहाँ ही करीब की मस्जिद में रहता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप जरा आओ वहाँ के ऊपर हमारे पास बैठो, कुछ दिन की बात सुनो। एक आदमी के अंदर की फिक्र होती है, देखो हमारी बातों से काम नहीं चलेगा, अंदर की कुरान और फिक्र से काम चलेगा। और आज सबसे बड़ी कमी उसकी है, हमारे अंदर कुरान और फिक्र नहीं। मेरा बेटा बेनमाज है, उसके मुझे कोई कुरान कोई फिक्र नहीं। मेरी बीवी कैसे तहज्जुद गुजार बन जाए, उसके लिए मैंने कभी नहीं सोचा, कभी उसका जहन नहीं बनाया, कभी उसको फजाइल नहीं सुनाए, कभी उसको हमने आखिरत नहीं बताई। अब ये मौलाना इलिया साहब को ये कुरान और फिक्र थी। तो सोचा कि नहीं ये कहते तो जाना चाहिए, तो उनके चेले थे उन्होंने कहा कि नहीं वो तो वहां बुला के पुलिस के हवाले कर देंगे ना, ये आदमी ऐसा नहीं लगता, उसके आवाज से आदमी भोला भला नजर आता है, हम जाएंगे। तो कहते कि फिर वो आया, हजरत ने अपने गले लगाया और उसकी खातिर में डाल के उसने फिर बात सुनी, हालांकि आपकी तो जबान में लुकमत थी, लेकिन मैंने कहा अंदर की कुरन सामने पर असर करती, और आदमी के अंदर जितना तकवा और परहेजगारी होगी ना इतना असर सामने वाले पर पड़ेगा। हाँ ये बात हमेशा याद है, तकवा और परहेजगारी उससे बात सामने असर करेगी, और अंदर की फिक्र थी तो क्या हुआ, कहा कि एक वक्त का वो काम का जिम्मेदार बन गया, अपने सारी चीजों को छोड़ दिया। इसलिए दोस्तों पूरा मजमा हमारे यहाँ किस्म किस्म का आएगा, और जो लोग आएंगे सबका हिसाब लगाओ कितने ज्यादा घंटे कितने ज्यादा दिन उन्होंने इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये सोचे कि 10,000 आदमी अगर हमारे इस्तेमाल के अंदर आए हैं और 10,000 आदमी अगर 2 दिन यहाँ के ऊपर रहते हैं तो 10,000 को 2 से आप मल्टीपल करोगे तो 20,000 दिन हमने इस्तेमाल किए लोगों के, कितने दिन इस्तेमाल किए, 20,000 दिन इस्तेमाल किए। अब ये 20,000 दिन को साल में तकसीम करोगे कितने साल हो जाएंगे, इतने सालों की मेहनत हम थोड़े वक्त में 2 दिन के में यहाँ कर सकते हैं। शर्त क्या है, हमारा पूरा माहौल बना है। एक तो पहले मैंने कहा कि खुद अखलाक, अब अखलाक के बाद कहते बात से क्या है कि भाई मैं जुड़ने की हम यूं ना कहें, देखो बोलने में बहुत फर्क, मैंने पहले ही कहा यह जबान की तरबियत करना बहुत जरूरी है, जबान की तरबियत करना बहुत जरूरी है। बहुत साल पहले मैंने हमारे दोस्तों से मैंने सुना जो दारुल तरकेशों में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम लोग फारिग हो रहे थे तो सारे फारिग होने वाले तलबाओं ने असाडिजा की दावत रखी, आपस में कुछ पैसे निकाले और कुछ बिरयानी का प्रोग्राम बनाया। अब बिचारे तालिब इल्म है, चावल लाए ये आ, लेकिन बिरयानी ऐसी बनी कि चावल ज्यादा ज्यादा गीले हो गए, यानी बिरयानी थोड़ा क्या कहते हैं हमारी जबान के अंदर ज्यादा लोसा जैसी हो गई। अब उन लोगों ने खाना खाया, हमारे मुफ्ती अहमद बेहबाज साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी वहां के साइको हदीस में थे, वो हाथ धोने के लिए खाने के बाद गए तो उनका जज्बा जरा ऐसा था बोलने का, यूं कहा अरे बेवकूफ़ किसी को पूछना तो चाहिए कैसे चावल लेके आए, उन्होंने यूं कहा। अब तो तालिबे इल्म थे, शागिर्द थे, उनके बात सुन ली, बराबर हमारी गलती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद नंबर आया मौलाना अब्राहिम साहब दुल्हवी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उन्होंने हाथ धोते हुए कहा कि अल्लाह पाक जैसे गोश्त और चावल में जोड़ के ऐसा हमारा आपके अंदर अल्लाह पाक जोड़ कर दे। क्या कहा, जैसे अल्लाह पाक ने चावल और गोश्त के अंदर जोड़ पैदा किया ऐसा हमारे और आपके अंदर अल्लाह पाक जोड़ पैदा कर दे। बात वही थी नहीं, लेकिन कहने का अंदाज ये था। जैसे भाई मजमा जोड़ने वाला हमारा साथ है, ए भाई आजा वहां के बड़े बड़े बात करते हैं, ये गलत, हमारे काम में हुक्म नहीं है। एक बार ध्यान में रख, इनके सारी और तवाजु और प्यार क्यों, हम सबका पक्का यकीन है वही आदमी वो अमल कर सकेगा जिसको अल्लाह करवाएगा, हमारी मेहनत से कोई नहीं जुड़ेगा। हम तो बार बार दिल में दुआ मांगे कि या अल्लाह मैं तो ऐसा नाहल हूं कि अगर मेरी कमजोरियां और मेरी बुराइयां अगर मेरी बीवी के सामने खुल जाए, बीवी मुझे घर से धक्का मार के निकाल दे, तो फिर हमारे लिए क्या खुशी है। ये तो एक मशवरे से हमें यहाँ के ऊपर जोड़ दिया, या अल्लाह तू ही हमसे काम ले, तू तेरे बंदों को जोड़े। एक है दुआओं का खूब, भाई दुआ के लिए जरूरी नहीं है कि हम किबला की तरफ बैठे और हम बावजूद है चलते फिरते भी आप दुआ मांग सकते हैं, या अल्लाह इतने सारे तेरे बंदों को तूने यहाँ के ऊपर भेज दिया है उसका वही वक्त सही गुजर जाए, ऐसे तो गैप से निजाम कर दे। तो ये है कि भाई आओ माशाल्लाह बहुत अच्छी बात हो रही है, ये कुरान और कुरान के फजाइल बयान किए जा रहे हैं, जिक्र के फजाइल बयान किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने की फिक्र। देखो अल्लाह वाले इतनी कुर्बानी देकर चल रहे हैं, 1 महीने से चल रहे हैं, वो हमारे पास है उनकी बात हम सुन ले, चलो हम भी सुने आप भी सुने। लेकिन कई मरतबा होता है कि मजमा जोड़ने वाले मजमा को जोड़कर वो दूर बैठ के बैठे बैठे बातें करें, और आवाम जानती है, एक जमाना था कि आवाम काम को नहीं पहचानती इसलिए काम को जानने की कोशिश में रहती थी, अब आवाम काम को जान चुकी है, अब काम करने वालों को देख रही है कि वो कैसे बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि फजाइल सुनाने का और हाकिमाना अंदाज में कोई बात नहीं कहने की, आप यूं करो आप यूं करो, ये नहीं, अगर हम सब ये करे तो, अगर ये करे तो उसमें इनके साड़ी और तवाजो होगी, करेंगे बेहतरीके से। इसलिए जो हमारी पहली जिम्मेदारी हमारी मजमा जोड़ने की, ये हमारा मजमा तो जिसको जहाँ जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाए और साथ में वो भी हल्कों में बैठ जावे। अगर तालीम का हल्का रहा तालीम के हल्के में, अगर बयान चल रहा बयान के अंदर, प्यार जो पीछे बैठे हुए प्यार, भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो इस्तीमा में पहली मरतबा आए हुए होते हैं, उनको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है कैसे है, वो करीब आने में ख्वाब महसूस करते हैं। अभी मुझे अयूब भाई वो असर के बाद या मगरिब बाद कह रहे थे कि देखो आगे का जगह खाली हो गई, रस्सी बांधने की जगह हो गई। मैंने कहा लोग आपसे डरते हैं इससे दूर रहते हैं, क्योंकि हम खैर खबर पूछते नहीं है। इस्तीमा आया और उसका इतना गलबा कि आप तस्किल क्या है, तो एक आदमी कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, तो तौदा तैयार थे भाई, सलाम का जवाब तो पहले दे फिर पूछ के तीन दिन तैयार है क्या। ये हमारी तबलीग नहीं है यार, मोहब्बत इनके साथ और तवाजू के साथ। हाँ, जो जिम्मेदारी फिर दूसरी बात, हड्डी लजीज ना बने, हड्डी लजीज जानते हैं नहीं। एक आदमी को कहा भाई पानी लेके आओ, वो जा रहा से दूसरे कहा जा रहा वो कागज लेके आओ, तो वहां चल गया कागज लेने के लिए, पानी भूल गया। अभी किसी ने कहा यहाँ ये हड्डी लजीज, हर एक की बात को सुनना नहीं, मेरी जिम्मेदारी वो है। ये जो हमारे इस्तेमाल हो रहा है बांग्लादेश के अंदर ढाका में होता है, वहां तो एक एक दो किलोमीटर दूर ये टॉयलेट वगैरह होता है और वहां की खिदमत में लोग रहते हैं, लोग दुनिया भर से वहां आके बयान सुनते, उनको बयान सुनने का मौका नहीं मिलता। तो उसके बाद मौलाना इनामुल हसन साहब के जमाने में ये बात तय हुई कि एक दिन ज्यादा जोर के उन लोगों के सामने फिर बातें होती थी, वरना जिसकी जो जिम्मेदारी जहां है वो रहे। हाँ, और एक की जिम्मेदारी में दूसरा पांव ना रहा है, भाई आपको मजमा जोड़ने में रखा आप मजमा जोड़ो, फिर दूसरी फिक्र में आप मत पड़ो, आप मजमा जोड़ने की फिक्र में। दूसरी बात है इख्तिला के मौके पर, तो इख्तिला में ये आखिरत समझाओ, मरने की बात की जिंदगी समझाओ, दुनिया की बेसबाती समझाओ, दुनिया छूटने वाली चीज है। हाँ, और उसके अंदर हमारी सलाहियतें, हमारा जान माल लग जावे जो हमेशा के लिए हमारे हाथ में से छूट जाने वाली चीज है, और जहाँ हमेशा रहने की बात है ये इख्तिला। और फजाइल सुनाओ अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो एक बार जहन में रखने के दूसरे के हमारे जमाने के लोगों की कारगुजरियां मत सुनाओ, हमारे बड़े मना करते। हाँ, हमारे जमाने के जो, इसलिए गालिबन हदीस में भी है, मुझे याद है वहां तक, ये उलमाए किराम जानते हैं, बुजुर्गों से मैंने सुना है कि जिंदों की इक्तिदा मत करो, मुर्दों की इक्तिदा करो। जिंदे कभी भटक सकते हैं भाई, तो आप क्या करोगे, होता है ना, कितने लोग हैं हमारी बस्ती में ऐसे मिलेंगे। हाँ, कि किसी आदमी की वजह से इससे हमारे अंदर, हमारे मजहब में इस्लाम में शख्सियत परस्ती नहीं है, व्यक्ति पूजा गुजराती में कहते वो नहीं है। हाँ, जो दुनिया से चल बसे, सहाबा दुनिया से चले गए, अब नहीं बदलने वाले हैं, उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उन्होंने जो जिंदगियां बनाई, उनकी जिंदगी जो नमूना हमारे बने, जिसका अल्लाह के नबी साहब खुद खुलासा है कि मेरे सहाबा सितारों के माने किसी की भी कृपा करोगे मंजिल मकसूद को पहुंच जाओगे, तो उनके वाक्यात सुनाए। इसलिए देखो दोस्तों, बीच में ये बात कहता चलो, फजाइल आमाल सिर्फ हम तीन दिन में निकलते हैं तो सुनते हैं, या चिल्ले में सुनते हैं, या मस्जिद की तालीम में सुनते हैं। और मस्जिद की तालीम का तो ये हाल है कि अगर मैं थोड़ा जिम्मेदार बना हुआ हूँ तो मैं बैठा हूँ तालीम में, लेकिन कौन बैठा कौन नहीं बैठा उसकी मैं फिक्र करता हूँ। अगर मुझे पूछा जाए कि इमाम साहब ने क्या पढ़ा हदीस, तो मैं ही नहीं जानता। शैतान तो बड़ा होशियार है, शैतान बड़ा होशियार है, आपको बिठा के आपको वहां से गायब कर देगा। इसलिए हमें सहाबा के, मैंने अभी सफर के अंदर ये पांच इस्तेमा के अंदर मैं साथ में था मौलाना इब्राहिम साहब वगैरह के, तो एक जगह अहमदाबाद में जाते हुए गाड़ी की ब्रेक थोड़े ये हो गई, तो फिर मौलाना को हमारी गाड़ी में लिया, हमने मौलाना वाली गाड़ी ले ली, इकबाल भाई यहाँ के वो भी हमारे साथ थे, तो मैंने देखा मौलाना जब गाड़ी में थे तो फजाइल आमाल पढ़ रहे थे। अल्लाह ने कितनी मकबूलियत, अल्लाह उनकी उम्र बरकत अता फरमाए, नजरे बद से बचाए, है कि ना, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, इतनी उम्र में भी फजाइल अमल पढ़ रहे थे। और हम ये समझते कि हम तो फजाइल अमल मुंह पे आ गए, और इसलिए हमारी मुलाकातों में फिर तान तस्नी होती, हमारे पास फजाइल नहीं होता। हाँ, इसलिए कहा जाता है ये मौका है खूब फजाइल, तो हमारे हर मजमा जोड़ने के अतबार से हो, इख्तिलाफ के अतबार से हो, या तस्किल तरतीब के अतबार से हो, और या चाहे सफेद सीधी करने के अतबार से हो, मजमा को आगे पहुंचाने के अतबार से हो, फजाइल के जरिए, किसके जरिए, फजाइल के जरिए आओ हम सब बेजान से करेंगे भी इंशाल्लाह। उस एतबार से
ہر خطہ وار جماعت جہاں جہاں کے جو آئی ہے وہ ابھی بٹھائیں گے کل بٹھائیں گے.